लेवल टॉक्स का ना होना, उसको मंसूख कर देना। और फिर क्योंकि आज सरताज अजीज साहब ने भी ये कहा है कि दीगर दो हाई लेवल्स के टॉक्स जो हैं वो होंगे भारत के साथ, तो इसकी क्या वजह
जी,
है?
उसकी वजह शायद पॉलिटिकल, जो अपने अपने देश में दोनों देशों की हालात है। एक भारत अपनी तरफ से चाहता है कि पहले टेरर के इशू पर एक स्टैंड पाकिस्तान का क्लियर हो, और पाकिस्तान का ये दृष्टिकोण है कि पहले कश्मीर की इशू पर भारत का रुख साफ हो। तो शायद इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिस वजह से कि हालांकि उसके कारण बताया गया कि हुर्रियत में जो जिस तरह से पाकिस्तान ने बात करने की कोशिश की, उसकी वजह से भारत नाराज है, और वो कहा गया और पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया कि नहीं, ये कंडीशन रखी जा रही है। तो इस वजह से उसमें शायद ऐसी सहमति नहीं बन पाई कि दोनों अपने अपने स्टैंड से पीछे हटें, और वो सूरत पैदा नहीं हो पाई जिसमें कि ये बातचीत की जा सकती थी।
जी
नहीं तो ऐसी कोई वजह नहीं थी कि इसको टाला जाए, लेकिन वहां पर एक जो कॉमन इशू है वो शायद क्लियर नहीं हो पाया कि किस किस मुद्दे पर, यहाँ पर ये अपने डोजियस टेरर इशू पर छोड़ने के लिए नहीं तैयार थे, वो अपने कश्मीर के इशू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि होना ये चाहिए था कि दोनों इशू पर लेकर के अगर डिस्कस होता, कोई बात होती तो
ठीक।
उसकी बात आगे बढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
लेकिन कुमार जी, उफा समझौते को अगर हम देखें तो वो तो बहुत ही वाज़े, बहुत ही क्लियर है उसके अल्फाज। उसमें ये तय पाया था कि खिते में अमन को यकीनी बनाने के लिए और डेवलपमेंट को फ़रोग देने के लिए दोनों ममालिक जो हैं वो तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ पर बात करेंगे। और आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें तो बज़ाहिर कश्मीर का इशू भी आता है।
हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, ये दोनों अपने आप में। लेकिन उसी में ये था कि शायद भारत की तरफ से विशेष रूप से था कि जो इस कश्मीर की हालात को बिगाड़ने में जो जिम्मेदार है वो शायद आतंकवाद है और टेररिज्म है, तो इस पर बात थोड़ी पहले होनी चाहिए, इस पे ज्यादा बात होनी चाहिए, और वो अगर चीज सॉर्ट आउट होती है तो कश्मीर को हम शांति से थोड़ा और भी डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन पहले ये चीज खून खराबा दोनों देशों के बीच में बंद होना चाहिए, जो उसके लिए दोषी है उनके लिए कुछ कदम करते हुए वो देश जो जिम्मेदार है उसके लिए दिखाई दे। इस पर शायद इन इश्यूज को लेकर के सहमति नहीं बन पाई, जैसा कि मैं मानता हूँ। हालांकि
जी
इश्यूज दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अब
ओके
जिनको बात करनी है दोनों पक्षों को, उनके बीच में शायद ये बात साफ साफ नहीं हो पाई कि इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए, और यही
ठीक।
वजह है कि दोनों अपने अपने इश्यूज पे लगे रहे, और हुर्रियत का बीच में जो एक नया इशू शुरू हुआ उसको लेकर के पीछे हटना पड़ा, और उसमें ये कहा जाता है भारत की तरफ से कि नहीं, पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था कि नहीं, हम बिना हुर्रियत के बात किए हम कश्मीर का इशू नहीं बात कर सकते। भारत को ये मंजूर नहीं था कि हुर्रियत कोई पार्टी नहीं है, कश्मीर और भारत के बीच में हुर्रियत का कोई रोल नहीं है। इन सब इश्यूज की वजह से ऐसा स्टैंड लिया गया जिसकी वजह से कि वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई।
ओके सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। शुक्रिया आप हमें टाइम दे रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि NSA लेवल टॉक्स जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के माबेन मनसूख हो चुके हैं, लेकिन 6 सितंबर को दो और मुलाकातें भी, हाई लेवल की मुलाकातें होनी है। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है, ये बातचीत जो है वो हो सकेगी? और इस दफ़ा क्या ऐसा तो नहीं होगा कि बातचीत से एक दो दिन पहले फिर पाकिस्तान कह दें कि हमने कश्मीरी अलीहदगी पसंदों से मुलाकात करनी है या उनसे मिलना है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कश्मीर कंपोजिट डायलॉग का हिस्सा है, जब शिमला मुआहदा तो छोड़ेंगे, जो लाहौर मुआहदा हुआ वाजपेयी साहब और जनाब नवाज शरीफ के दरमियान, उसमें भी ये मामला मौजूद है और सारी दुनिया को मालूम है। तो इस हवाले से फैसला अगर प्लेबिसिट होता है तो फैसला तो कश्मीरियों ने करना है। मैं ये समझता हूँ कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाकई अमेरिका और कनाडा जैसे ताल्लुकात जो होने भी चाहिए उनके लिए स्टेट्समैनशिप की जरूरत है। ये बहाने, लंगड़े लेम एक्सक्यूजेज, ये चालाकियां, इनको छोड़कर इस रीजन के, देखें
ये बॉर्डर के उस तरफ भी इंसान है, इस तरफ भी इंसान है, तो ये ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के एहसास के लिए काम करना। नवाज शरीफ साहब जिस तरह से गए मोदी साहब के हल्फबरदारी में, वहां से फिर जो जवाब आया वो कुछ अच्छा नहीं था। इसी तरह से कंपोजिट डायलॉग की मैंने सुषमा स्वराज साहब का कल का परसों का स्टेटमेंट सारा देखा, खुद सेल्फ कंट्राडिक्टरी है वो। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना होगा अगर हमें हल करना है, मुजाकिरात हो जाएं।
ठीक है, तो अभी जो 6 सितंबर को आपको लगता है ये मुजाकिरात हो सकेंगे, और आप कह रहे हैं कि कॉम्पोजिट डायलॉग का हिस्सा है कश्मीर का मसला, ये हमें भी मालूम है, लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब अगर उफा समझौते को आप देखें तो कॉम्पोजिट डायलॉग की बारी जो है वो चौथे नंबर पे आती है। पहले NSA लेवल की टॉक्स जो हैं वो होनी थी, उसके बाद रेंजर्स के जो सरबराहान है उनकी मुलाकात होनी थी, उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन दोनों सरहद के दोनों जानिब उनके कमांडर्स की मुलाकात होनी थी, उसके बाद कॉम्पोजिट डायलॉग की जानिब आना था और जिसमें कश्मीर भी शामिल है।
मैं देखिए, मैं आपसे शहनाज अर्ज करूंगा, मेरे भाई भी सुन रहे हैं, मैं ये अर्ज करूंगा कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ गुज़श्ता 25 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, इसीलिए अभी कोई कुछ नहीं कह रहा था जब इनविटेशन आई ओथ टेकिंग सेरेमनी की, ने शमूलियत की, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने उस वक्त कहा इंडियन चैनल्स को कि जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ वो ये दावत कबूल करेंगे और वो आएंगे, और वही हुआ। इंडियन चैनल्स की लाइन लग गई, 15-16 चैनल्स से मैंने बात की, वही चली, और फिर 3 दिन के बाद वही हुआ जो मैंने कहा। मैं अब भी ये कहता हूँ कि जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं। अब इंडियन लीडर की इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका एक माजी है, और माजी बहुत दूर का नहीं, माजी करीब है। जिस तरह सूबे में, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन में तकरीर करते हुए कहा कि जो मैंने पहले किया था मैं आज भी करूंगा, वो उससे किस तरह जान छुड़ाएंगे, वो उससे किस तरह अलग होंगे, अपनी पार्टी के हाकिश स्टैंड से किस तरह अलग होके अमन की तरफ आएंगे, ये देखना है हमें।
ठीक, ओके, तो आप अब क्या देखते हैं, आपकी जो हुकूमत है वो 6 सितंबर को मुलाकात करेगी?
मेरी ख्वाहिश है शहनाज, मेरी ख्वाहिश है, मेरी अदना सी, मैं जिस इदारे का सरबरा हूँ एवेक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का, वहाँ हिंदू और सिख दोनों माइनॉरिटीज मेरी जिम्मेदारी है।
बिल्कुल,
मैं उनकी इतनी खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं मैं कटास राज पहुँचता हूँ, कहीं मैं हिंगलाज माता मंदिर बलोचिस्तान जाता हूँ, कहीं मैं आज़ाद कश्मीर में इनका शारदा मंदिर है वहाँ मैं चीफ इंजीनियर को लेकर और अपने डिप्टी सेक्रेटरी वहाँ पहुँचता हूँ, कहीं मैं मुल्तान में इनके जो मंदिर हैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। मैं ये मैसेज दे रहा हूँ और ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर दे रहा हूँ कि हमारे लिए हिंदू हिंदू नहीं है, सिख सिख नहीं है, मुसलमान मुसलमान नहीं, पहले तो सब इंसान है। तो जब सब इंसान है तो मैं ये कहता हूँ, देखो भाई, आपका मजहब आपको मुबारक, आपका मुल्क आपको मुबारक, लेकिन आइए हमारा मजहब और हमारा मुल्क हमें मुबारक, लेकिन इंसानियत तो साझिए ना, वो इंसानों के लिए काम करें।
सही, ओके, कुछ कॉलर से उनकी जानिब भी हम जाना चाहेंगे, लेकिन राकेश कुमार साहब आपसे अभी BJP के एक मेंबर से जो मेरी बात हो रही थी उनका ये कहना था कि कश्मीरियों से मुलाकात या उनको इस मोड़ पे इस बातचीत में लाना ये शिमला माहिदे के की खिलाफ वर्जी है, और ये कि शिमला माहिदे के तहत कश्मीर का जो मसला है वो बायलिटरल इशू है। तो यहाँ पे फिर मैं आपसे एक, क्योंकि सवाल उठाया जाता है कि कश्मीर के बारे में भारत जो है वो किसी तीसरी पार्टी की तरफ से मुदाखलत के ख़िलाफ़ है, लेकिन गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि लखवी के केस में भारत जो है उसने UN की हेल्प मांगी है, तो इसमें कुछ आपको कंट्रडिक्शन जो है वो नज़र नहीं आती? और हिंदुस्तान टाइम्स जो है उसका भी मैं हवाला देना चाहूँगी, इंडियन अखबार है, उन्होंने भी ये बात की है कि मोदी सरकार की जो पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से उसमें कंट्रडिक्शन है।
जी हाँ, देखिए, एक ओपिनियन वो हो सकती है, लेकिन
मैं जहां तक इसको एनालाइज करता हूं कि अगर एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का नाम लेकर के अगर कोई चीज बात की जाती है तो उसके उस कारनामों के वजह से उसकी चर्चा होती है। उसके कारनामों का मतलब ये है कि वो आतंकवाद से जोड़ करके जब देखा जाता है तो उसकी चर्चा आतंकवाद ये किसी एक दूसरे के देश के बीच का विषय नहीं है, ये बायलैटरल इशू से अलग हट करके है। इस वजह से उसकी चर्चा की गई, न कि इस वजह से कि इसको कश्मीर से रिलेट करके देखा जाए। मैं ये मानता हूं कि उसका आतंकवाद से सीधा संबंध था, इसलिए उसको रखा गया। और उसमें हर देश एक दूसरे की हेल्प चाहता है और करना चाहता है, कोशिश करता है, जिससे कि पूरी दुनिया के कई मुल्क बुरी तरह से तबाह हैं। उस नियत से उसकी चर्चा की गई थी। मैं नहीं समझता कि ये बायलैटरल इशू आतंकवाद है, और उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कश्मीर का इशू बिल्कुल अलग है और आतंकवाद का इशू अलग है, तो कहीं कोई ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नजर आती।
ओके, इस मोड पे हम प्रोफेसर फैजान जो हैं उनको भी खुशामदीद कहते हैं, लेकिन क्विकली कुछ कॉलर्स हैं उनको हम सुनते हैं। मुरीद खान मियावाली से, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप?
सर दोस्त कर रहे हैं जनाब, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसला कश्मीर के अलावा कोई अल प्यार का झगड़ा तो नहीं है? 1.5 करोड़ मुसलमान कश्मीरियों को कब तक गुलाम बनाया जाएगा? ऐसा न हो कि न बजे बांस और न बजे न रहे बांस न बजे बांसुरी, तो और लड़ते लड़ते हो जाए गुम एक ही चोंच और एक ही दुम, दोनों मुल्क तबाह बर्बाद होने से पहले और गज़वे हिंद से पहले कश्मीरियों को आजाद कर देना चाहिए जनाब। जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा पाकिस्तान और इंडिया के अमन कैम नहीं हो सकता।
ओके, शुक्रिया कॉल करने का। आपका कहना है कि खिते में देरपा अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक के आपके बकौल कश्मीर का मसला हल ना हो। कॉल करने का शुक्रिया। कोही सुलेमान से पीर दस्तगीर साहब, जी अस्सलाम वालेकुम, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। खान अकबर अफरीदी साहब कुहाड़ से, जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब।
वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी।
एक पेशेंगोई के मुताबिक हिंदुस्तान जितना भी असला इकट्ठा कर रहा है, जहाज, मिसाइल, टैंक और क्या वो माली गनीमत के तौर पर मुसलमानों के हाथ लगेगा, लेकिन तफसीर में लिखा हुआ है कि मुसलमान हिंदुस्तान पे हमला नहीं करेंगे, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी क़यादत उभर के सामने आएगी जो मुजरिमाना ज़हनियत की होगी, जो गलत फैसले करेगी, जो अक़लियतों को नष्ट अबूद करेगी और हमसायों के साथ ताल्लुकात बर्बाद और जंगों पे रहेगा। वो क़यादत जो आज है, मैं फैजान साहब से मेरा सवाल है
जी,
वो क़यादत जो आज है उनकी ज़हनियत, उनकी थिंकिंग, उनके अपने मुल्क में 21 दहशतगर्द तंजीमें हिंदुस्तान हुकूमत के खिलाफ चल रही हैं बुमाए खालिस्तान के, क्या अगर ऐसी क़यादत है हिंदुस्तान का वो क़यादत रहेगी या हिंदुस्तान रहेगा या दोनों फना होकर बैठ जाएंगे?
जी ये मुख्तलिफ मफरूज़े जो हैं उस पर आपने बात की है, कॉल करने का शुक्रिया आपका। लंडी कोतल से कॉलर लेते हैं, सेगमेंट के आखिरी कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप?
जी मेरा नाम गुलमीर है और मैं कहना चाहता हूं कि हुक्मरानों को जोश की बजाय होश से काम लेना होगा। अगर उन्हें दोनों जानब से अपने अवाम के मफादात अजीज है तो फौरन डायलॉग के मेज पर आना चाहिए।
बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बेहद शुक्रिया। और ये जो पॉइंट आपने उठाया है इसको हम आगे बढ़ाते हुए सिद्दीकुल फारूक साहब आपसे सवाल करना चाहेंगे। जिस तरह हमारे कॉलर ने कहा कि हुक्मरानों को दोनों जानिब जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए, सवाल आपसे ये है कि आप नहीं समझते कि सरताज अजीज़ का दिल्ली ना जाना ये एक ब्लंडर है, क्योंकि इससे मुस्तकबिल में जो मुलाकातें होनी हैं दोनों मुल्कों के दरमियान वो भी शक में पड़ चुकी है? सितंबर में अक्वामे मुतहिदा की जो जनरल असेंबली की मीटिंग होनी है, साइड लाइन पर बहुत तवक्कु की जा रही थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान मीटिंग होगी। इसके अलावा सिद्दीकुल फारूक साहब आप अगर देखें तो अगले साल सार्क कॉन्फ्रेंस जो हैं वो पाकिस्तान में होनी है, अगर हालात ऐसे रहें तो शायद उसमें भी वज़ीर आज़म मोदी जो हैं वो शिरकत ना कर सकें, तो आप फिर नहीं समझते कि उन्होंने दिल्ली जाकर गलती की है और जो मुज़ाकरात हैं उसको काफ़ी पीछे उस अमल को धकेल दिया है?
देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इंडिया की कैंपेन को देखें,
مذاکرات کے حوالے سے بند کرتے 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 انہوں نے ایک چھوٹی سی درز چھوڑی ہے, کھڑکی بھی نہیں کھولی انہوں نے. تو صورت میں میں جا کے سرتاج عزیز صاحب, جنہیں میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, سرتاج عزیز صاحب میرے سرپرست ہیں, بزرگ ہیں, اور ہماری ایک ایسی ریلیشن شپ ہے جو کچھ عام آدمیوں کے درمیان نہیں ہوتی. میں انہیں بھی جانتا ہوں, وہ بھی جانا چاہتے ہیں, لیکن کچھ بھارت سرکار مودی سرکار کی طرف سے کوئی خوش آمدید تو کہیں اچھے طریقے سے. میں نے جو پہلے کہی تھی جناب, میں دہراؤں گا بات, نیک نیتی سے, کھلے دل سے جب تک نہیں بیٹھیں گے, جیسے کہ بائی لیٹرل ٹرائی لیٹرل, بھائی یہ جو کشمیری ہیں یہ کیا اس ریجن یا انڈیا اور پاکستان سے باہر کی بات ہے؟ میں تو اس کی انٹرپریٹیشن ٹرائی لیٹرل یوں کروں گا کہ کوئی تیسرا ملک اس میں نہ ڈالے.
صدیق الفاروق صاحب, ابھی تو مذاکرات شروع ہونے تھے, اتنے عرصے بعد جو توقعات تھی اس پہ بھی آپ لوگوں نے کہا جا رہا ہے کہ پانی پھیر دیا, ابھی تو شروع ہونے تھے. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ جو ہے اس کا حصہ تھا, اس وہاں پہ پہنچ کے کشمیر کے ایشو کو اٹھانا تھا, تو این ایس اے لیول پہ اس کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا. یہ مختلف جو
تجزیہ, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باتیں تو ساری کرنی ہے, ادھر سے پروپیگنڈا ہو کے پاکستان پر دباؤ, پھر پاکستان اگر بات کرتا ہے, یعنی وہ بمبئی اٹیک سے اٹھاتے ہیں, سمجھوتا ٹرین کا جو کچھ ہوا تھا اس کی بات نہیں کرتے. اگر میں پھر کہتا ہوں کہ بمبے اور سمجھوتا اور یہ ساری بات دہشت گردی, کیا پاکستان کے اپنی 60,000 جانے اس دہشت گردی کے نظر نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کو $100 بلین کا اقتصادی نقصان نہیں ہوا؟ تو ہم تو خود ایک چیز کے شکار رہے ہیں, ہم اس میں بیٹھ کے اس پہ, اور اس وقت آپریشن ضرب عضب جو ہے, کیا بلا تفریق نہیں ہو رہا سب دہشت گردوں کے بارے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سچویشن ہے جس میں انڈیا کو بھی بلکہ ایک ہیلپنگ ہینڈ پاکستان کو دینا چاہیے. بڑا دل کریں, مل کر بیٹھیں, کہیں کہ ہم سب ایشوز پر بات کریں گے, آئیے آپ ان اس وقت ان دو ایشوز پر بات کر کے ہم آگے بڑھیں گے. لیکن یہ لکیریں لگا دینا, لکیریں کھینچ لینا کہ اس وقت تو صرف اس پہ ہوگی بات, اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب ہے دل کھلا نہیں ہے, محض ٹیکنیکلٹیز ہیں, محض بہانے ہیں, اصل میں ٹائم گین کرنا ہے آگے آگے اس ایشو پر, اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو بحال کرنے میں کوئی نیک نیتی نہیں ہے.
اوکے, آپ کا صدیق الفاروق صاحب اور راکیش کمار جی دونوں کا بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا, اور پروفیسر فیضان صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. آج 24 تاریخ کو مذاکرات ہونے تھے اور ان مذاکرات نے آگے بڑھنا تھا, اور اس سے کافی توقعات جو ہیں وہ رکھی جا رہی تھی, لیکن یہ مذاکرات جو ہیں دونوں کنٹریز کے مابین این ایس اے لیول کے نہ ہو سکے. اب دونوں ملکوں کے مابین مستقبل قریب میں رابطوں کا کوئی امکان جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے؟
جی, سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو, چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے, بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. اصل میں جو یہ یقیناً ایک دھچکا ہے جو پہنچا ہے اس مرحلے کو, یا اس جو تسلسل پیدا ہونے کا امکان تھا جیسے آپ نے فرمایا, اس میں ایک دھچکا آیا ہے, اس میں ایک کمی آئی ہے. لیکن اس میں جو ابھی آپ کے دوسرے کامنٹیٹر تھے, ان کا نام سیف
راکیش کمار تھے انڈین سے, اور صدیق الفاروق پاکستان سے.
صدیق الفاروق صاحب جو فرما رہے تھے اس میں کچھ حقیقت ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا آیا ہے کہ پاکستان پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور انڈیا آگے آگے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے بات کر لو, انڈیا کہتے ہیں پہلے یہ کرو ہم پھر بات کریں گے, پہلے یہ کرو ہم پھر بات کریں گے. یہ اور یہ سلسلہ, یہ جو آنکھ مچولی ہے, یہ سلسلہ خاصی دیر تک چلتا رہا ہے. یہ شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کچھ عرصے پچھلے کچھ عرصے میں جس میں پاکستان نے کہا ہے کہ ہم یہ ناچ زیادہ نہیں ناچ سکتے. اور یہ اس میں کچھ جو وزیر اعظم نواز شریف ہیں وہ انہوں نے اپنے اعتماد کو ظاہر کیا ہے, یعنی اپنے کانفیڈنس کو ظاہر کیا ہے پوری دنیا پر بھی, پاکستانیوں پر بھی, اپنے سیاسی مخالف جو ہیں ان پر بھی, اور ہندوستان پر بھی. کیونکہ ابھی ایک دو سال پہلے کی بات ہے کہ آپ کو شاید یاد ہو, جب اسلام آباد میں دھرنا تھا اور نواز شریف صاحب کی پوزیشن جو تھی بہت اس میں کچھ وہ سیاسی دباؤ کا شکار تھے, تو اس وقت ہندوستان کے کچھ اور طور طریقے تھے, और ये एक सियासत में ऐसा होता है कि दाव दाव वगैरह लगाए, दाव पीच चलते हैं। तो इसमें एक तो ये मैसेज है, दूसरी तरफ जो है वो ये है कि जब आप दो एटमी ताकतें हों तो किसी भी मौजू पर अगर बात हो जाए तो अच्छी बात है, और खासकर अगर आप एक तरह से आपस में एक दुश्मनी है या लातालुकी है, उसके मदद मिलती है। इंडिया जो है वो बहरहाल एक बड़ी इकोनॉमी है, उसका बड़ा जेस्ट, उसका बड़ा स्टेचर है दुनिया में, और वो उसको अपने लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करता है, और वो चाहता है कि पाकिस्तान इस बात को तस्लीम कर ले। पाकिस्तान के तस्लीम या ना करने से नहीं होता, क्योंकि हम पिछले जो सदी के वाकयात हैं वो इस बात के गमाजी हैं कि चाहे ताकत कितनी भी बड़ी हो, चाहे जिसके पास जितनी भी बड़ी फौज हो, जब आप ना तारीख के ना इंसाफी के दायरे में रहते हैं तो तारीख के खिलाफ होते हैं, और तारीख के बहाव के खिलाफ खड़े होना किसी ताकत के लिए मुमकिन नहीं ज्यादा देर तक रहना, ये बारहा हम देख चुके हैं। अब हिंदुस्तान का जो मौकफ है कश्मीर के सिलसिले में, ये सब पर आया है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अंदर इसमें बड़ी अच्छी बहस चलती रही है, पिछली हुकूमतों ने इसमें कुछ पेशरफ भी की है। इस वक्त जो हुकूमत है, जैसे एक और जो नुकता उठा, जो मोदी साहब की हुकूमत है, उसमें उसका एक बैकग्राउंड है, जैसे आप सबको मालूम है, उसका एक तासुर है, और मोदी साहब उस तासुर को जायल करने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि उसको री इन्फोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हिंदुस्तान का जो डिप्लोमेसी का जो मैदान है उसमें हिंदुस्तान को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक मल्टी रेशल, एक डाइवर्स मुल्क है जिसमें बहुत सी नस्लें, मजाहब, कौमें बसती हैं।
प्रोफेसर साहब, वो सही है, कतई कलामी माफ, वापस मैं उसी मीटिंग्स जो होनी थी उसकी जानिब मैं आना चाहूँगी। ये बात ठीक है, कश्मीर एक मसला है, इससे ना भारत इनकार करता है और ना पाकिस्तान करता है, लेकिन ऊफा जो समझौते को अगर आप देखें तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना था, बातचीत होनी थी। फोर्थ नंबर था, शुरू में भी मैंने कहा कि जब कॉम्पोजिट डायलॉग पे आना था उसमें कश्मीर पे बात करनी थी, तो ये उससे पहले यानी जो समझौता हुआ था उफा में उसकी खिलाफवर्जी की है ये कहा जा रहा है पाकिस्तान ने।
जी, उसमें देखिए जो पाकिस्तान का मसला है, जो पाकिस्तान ने कहा, अगर आप उस आप एजेंडा आइटम से कह रहे हैं कि एजेंडे आइटम की तरतीब जो है उसकी खिलाफवर्जी की गई है, माहिरे की खिलाफवर्जी नहीं की गई। एक एजेंडा आइटम आपने सेट किया है, 1 2 3 4 5 जितनी भी आइटम्स हैं उसमें, हम कहेंगे जी हमने नंबर 3 पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें इसमें मैं अगर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा तो वो ये होगा कि यकीनन नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके जो अपने मुल्क में यानी पाकिस्तान में इसके कुछ सियासी वजूहात हो सकती हैं कि उन्होंने ये पोजिशन ली हो या उन्होंने ऐसा सोचा हो कि ऐसा किया जाए। अलबत्ता एक बात मैं और ये कहना चाहूंगा कि जो अगर हम पहले जो एजेंडा आइटम है उसी पे डिस्कस कर लेते, जिसको नेशनल सिक्योरिटी का था, आई थिंक उसकी तरफ आपका इशारा है शायद।
जी बिल्कुल,
जी, तो उसमें उसमें यह है कि पाकिस्तान के पास बहुत मवाद मौजूद है इस वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान की एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर, और उनका तालिबान की मदद करना, और जो पाकिस्तान में धमाके
लेकिन
हुए
भारत
जो
के पास भी मौजूद है प्रोफेसर फैजान साहब। अभी रिसेंटली उन्होंने नदीम नामी एक लड़के को पकड़ा है जिसको वो कसाब 2 का नाम दे रहे हैं, तो
जी
वो उन्होंने पूरी डिटेल्स बताई है कि उनको किस तरह ट्रेनिंग दी गई पाकिस्तान में, किस तरह उनको यहाँ भेजा गया, ये नहीं पता कि वो दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन उनके पास भी, उनका भी ये कहना है कि उनके पास काफ़ी शवाहिद मौजूद
जी,
है।
लेकिन होता ही हुआ यूं है कि पिछले कुछ अरसे में, कुछ बरसों में हमने हिंदुस्तान की तरफ से तो बहुत वावेला हुआ और बहुत शोर मचा, और कुछ सच था कुछ झूठ था, और उसका एक इमेज जो है उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ, और पाकिस्तान ने बर्दाश्त भी किया। और अब क्योंकि एक और बात जो दुनिया के सामने आ रही है कि वो हमारे एक दोस्त हैं फरीद जकरिया साहब, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान के बारे में कि हमारे वी डोंट हैव एनी मलिशियस बोन्स इन अवर बॉडी, कि हमारे दरमियान हमारे में तो कोई शरारत की हड्डी तक मौजूद नहीं है। तो लेकिन हुआ यूं है अब कि ये बात सामने आती जा रही है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, कि کہ صرف نہ صرف یہ کہ, اور یہ ایک اور بڑے مزے کی بات ہے کہ دونوں بھائی, یا ان کو میں بہنیں یا بھائی جو بھی کہہ لیں, جو ملک ہیں پاکستان اور انڈیا, ایک جڑواں ملک آپ کہہ لیں کہ ایک ہی وقت پیدا ہوئے, ان میں ایک بڑی مشترک بات ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کی حرکتوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں.
صحیح. اور یہ بالکل جو موجودہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, کسی ایک ملک کو ایک طرف کو بلیم جو ہے وہ کرنا مناسب نہیں ہے. تو اب بات کس طرح بڑھائی جائے پروفیسر فیضان صاحب, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی 25% آبادی جو ہے وہ اس خطے میں موجود ہے, ان میں سے بیشتر جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, ان کے لیے جو کرنا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ زیادہ ضروری ہے, اس طرف توجہ دینا. تو اب آگے کس طرح بڑھایا جائے؟
دیکھیے, اس میں پہلے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کا جو مسئلہ ہے وہ اگر حل ہوتا رہے تو وہاں کی دونوں طرف کی جو عوام ہیں ان سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے, کیونکہ چیزیں سستی مل جاتی ہیں, خوراک سستی مل جاتی ہے. تو یہ ایک تو ڈیفینیٹلی بات ہے جو کہ پاکستان بھی چاہتا ہے اور انڈیا بھی چاہتا ہے, بلکہ دونوں طرف کے جو لوگ جو کہ بارڈر کے آس پاس بستے ہیں, سرحدوں کے, وہی چاہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ ہو, کیونکہ وہ اس سے اکانومی دونوں ملکوں کی بہتر ہوگی. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت یہ جو سیاسی چال ہے جو چلی گئی ہے, اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مودی صاحب کی حکومت ہے اس کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو چینج کرنا پڑے گا, چاہے وہ پبلک امیج کے لیے ہو, کیونکہ نواز شریف کے یہ کرنے سے جو بال ہے, جس کو کہتے ہیں جو گیند ہے, وہ مودی صاحب کی حکومت کے کورٹ میں ہے. ان کو اب یہ پلے کرنا ہے کہ وہ اس کو کیسے پلے کرتے ہیں, اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک منجھی ہوئی سیاسی چال ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو مورلی اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے پاس یہ گراؤنڈز موجود ہیں کہ وہ یہ چال جو ہے وہ چل سکتا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ایک تو کچھ اس کی اندرونی کنزمپشن ہے, بیرونی کنزمپشن ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ باور کروانا چاہتا ہے فیصلہ کرنے والی قوتوں کو انڈیا میں کہ ہم تو سیریس ہیں ہی, اگر آپ کو بھی سیریس ہونا پڑے گا. اور اس کی وجہ ایک اور بات ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں ہندوستان, بلکہ 9/11 کے بعد, مگر پچھلے 5 سالوں میں خصوصی طور پہ ہندوستان میں ایک سوچ میں ایک چینج آیا ہے, اور ہندوستان میں ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اثر و رسوخ حاصل کر لیا ہے جو امریکہ کے نیو کان جو تھے ان سے بہت متاثر ہیں ان کی سوچ سے. لیکن امریکہ کے نیو کانز جو ہیں ان کا جو سوچ ہے وہ ایک اور حقائق پر مبنی ہے, اور ہندوستان کے جو نیو کانز ہیں, یا ان کو انڈین نیو کانز کہہ لیجئے, ان کی سوچ کسی اور چیز پر منحصر ہے. اور ہندوستان اور امریکہ میں بہت فرق ہے, اور اگرچہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور ہندوستان میں بہت سی آپس میں کوآپریشن چل رہی ہیں, لیکن وہ جو سوچ ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ پبلک ڈسکورس ہے, یعنی کہ سیاسی بیانیاں جو ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے, اس میں ایک سوچ پنپ رہی ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اور یہ بات وہ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دونوں طرف امریکہ کے بہت بڑے بڑے سمندر ہیں, اور لوگ اور امریکہ اپنے آپ کو ایک سیف حصار میں آسانی سے کر سکتا ہے. ہندوستان کے پاس, انڈیا کے پاس, یا پاکستان کے پاس, یا بنگلہ دیش کے پاس یہ لگژری نہیں ہے. ہم دنیا کے ڈاؤن ٹاؤن میں رہتے ہیں جہاں دیواروں سے دیواریں ملی ہوئی ہیں, محلے ایک ہیں, ایک کا نقصان سب کا نقصان ہے. یہ سوچ جو ہے جو ڈیولپ ہوئی ہے 5 سالوں میں ہندوستان میں, وہ اس سوچ کی ریفلیکشن لگتی ہے جو کبھی پاکستان میں ہوا کرتی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. نہ ہم یہ کر سکتے ہیں, نہ ہم وہ کر سکتے ہیں. ہماری دیواریں ملی ہوئی ہیں, ایک کے گھر میں آگ لگے گی, دوسرے کے گھر میں آگ پہنچے گی ضرور. تو یہ سوچ جو ہے اس کو اس کے لیے یا تو دوسری سوچ کو پنپنے کا موقع دیا جائے جو کہ امن اور آشتی کی بات کرے اور کوآپریشن کی بات کرے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو نیریٹو ہے, یعنی کہ جو بیانیہ ہے, وہ دونوں ملکوں میں چینج ہو چکا ہے. پاکستان میں بہتر کی طرف گئی ہے صورتحال, مگر ہندوستان میں وہ بیانیہ جو ہے وہ منفی سمت میں جا رہا ہے.
جی, بہت شکریہ پروفیسر فیضان الحق صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور سامعین, یہ تھے یہاں امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد امریکی جو ہمیں بتا رہے تھے, اپنے کمنٹس دے رہے تھے پاک بھارت کے تعلقات کے مابین جو ملاقاتیں ہونی ہے آئندہ, اس کا مستقبل وہ کس طرح دیکھتے ہیں. آپ کا شکریہ. اس وقت ہم ایک بریک لینا چاہیں گے اور بریک سے واپس آ کر کراچی آپریشن پہ ہم بات کریں گے. ایم کیو ایم کا ایک وفد جو ہے اس نے آج وزیراعظم نواز شریف سے صاحب سے بات کی ہے, کیا بات ہوئی ہے اور اس ملاقات کا کیا نتیجہ سامنے آیا ہے اور ایم کیو ایم اس ملاقات سے کہاں تک مطمئن ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل انالسٹ خالد فاروقی صاحب, شمس میر صاحب پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما ہیں اور کچھ دیر میں اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے حیدر عباس رضوی صاحب, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما شمس میر صاحب اور ہمارے ساتھ ہیں ایک غیر جانبدار سیاسی تجزیہ نگار خالد فاروقی صاحب. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کراچی آپریشن پہ کہ وہ کتنی کامیابی سے وہ جا رہا ہے اور یہ کہ اس آپریشن سے متعلق ایم کیو ایم کے کیا تحفظات ہیں. آج جو وزیراعظم صاحب سے ایم کیو ایم کے جو ایک ڈیلیگیشن ہے ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ کتنی کامیاب رہی, اس پہ ہم بات کریں گے. ہم اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں. ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں. جی حیدر, اوکے, اس وقت وہ نہیں ہے, ابھی انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا ہے. شمس میر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم, شکریہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. اور خالد فاروقی صاحب, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید ہم کہتے ہیں. شمس میر صاحب, یہ جو آج ایم کیو ایم کے ایک ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم صاحب سے, یہ بتائیے کہ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا اور کیا بات ہوئی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہناز, پہلے تو وائس آف امریکہ کا شکریہ کہ وہ اس قسم کے جو ایشوز ہیں ان کی حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے لانے کے لیے بڑا اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں آپ. جہاں تک بات ہے کراچی آپریشن کی اور آج کی ملاقات کی, تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا ذرا سا کہ پینسٹر صاحب جو ہیں اور پی ایم ایل این کی جو موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کراچی آپریشن کے حوالے سے کتنی سیریس ہے. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیکنڈ فیز ہے اس آپریشن کا, کراچی جو آپریشن ہے اس حوالے سے, اس میں آپ کے سامنے ہے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا 09 سے جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو کراچی کے حالات ہیں اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا صرف موقف نہیں ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ باقاعدہ پاکستان کی تمام جتنی بھی فیڈریشن کی پارٹیز ہیں یا پروونشل پارٹیز ہیں, ایک اے پی سی کے تحت, ایک نہیں بلکہ کئی اے پی سیز کے تحت یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کراچی میں ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ بتاخوری کے خلاف جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کے خلاف جو ہے وہ ایسے کرمنلز کے خلاف جو کراچی کے امن کو تباہ کر رہے ہیں اور جس کے اثرات ملک کے دیگر حصوں میں بھی پڑتے ہیں, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے گا. یہ فیصلہ اے پی سی کا ہے. اب اس سیکنڈ فیز کے تحت وہاں پر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا سیکورٹی فورسز ہیں یا رینجرز ہیں وہ جس قسم کے ایکشنز وہاں کر رہی ہیں ان کو ایک مینڈیٹ حاصل ہے پروونشل گورنمنٹ کا بھی, ایم کیو ایم کا بھی, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی. اس سلسلے میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے پھر اپنے ریزگنیشنز دے دیے کہ کیونکہ وہ آپریشن بہت زیادہ اپنی شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اس قسم کے آپریشن نے کراچی کو امپروو بھی کیا ہے, کراچی کے پیس کو امپروو کیا ہے, کراچی کی اکانومی کو امپروو کیا ہے, कराची के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उसको इम्प्रूव किया काफी हद तक जो है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर एनक्यूएम ने जब देखा कि ये मामला जो है, एनक्यूएम के अपनी कुछ शिकायत भी हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हैं, अब वो शिकायत आपको पता है वो पॉलिटिकल शेयरिंग के हवाले से है, वो गवर्नेंस की शेयरिंग के हवाले से है, ये एक इशू भी बीच में आया हुआ है, मल्टीपल इशूज हैं वहां पर जो है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का टारगेट जो है सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का जो मोटिव है इस वक्त वो सिर्फ ये है कि कराची के अंदर कराची के लोगों के लिए, कराची की आवाम के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन या फिर उनकी जो एथनिक एसोसिएशन है उससे हटकर कराची के अमन को बहाल किया जाए। अब जब ये प्रेशर सामने आया और आपने देखा कि एमकेएम ने फिर अपने रिजाइन्स आगे दे दिए, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने जो है इस पॉलिटिकल प्रोसेस को ये मुनासिब नहीं समझा कि रोका जाए किसी तरीके से, या एमकेएम इसके अंदर कुछ इस किस्म की वो करे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक अच्छी नीयत के साथ जो है एमकेएम को पैगाम भी भिजवाए और एक अच्छी डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन फिर अचानक एमकेएम ने दोबारा जो है वो इनकार कर दिया। आज वो मिले हैं प्रेमिस्टर साहब से और आज भी उनका यही एजेंडा है, आज भी उनका यही एजेंडा है कि उनको जो रिजर्वेशन हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे हैं या फेडरल गवर्नमेंट पे हैं, वो यही है कि
शमशीर साहब उनके जो तहफुजात हैं और जो शिकायत है इस ऑपरेशन से मुतल्लिक उसमें कितना वजन है खालिद फारूकी साहब से भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त हैदर अब्बास रिजवी साहब बताया जा रहा है इस वक्त मसरूफ हैं। एमक्यूएम के एक और रहनुमा मोहम्मद हुसैन खान साहब ने स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हुसैन खान साहब।
सलाम, आप कैसी हैं? ठीक हैं,
सर, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आप हमें टाइम दे रहे हैं सर। और मोहम्मद हुसैन खान साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे के जी आपको आवाज़ आ रही है?
जी मेरे तो बिल्कुल क्लियर आवाज़।
ओके, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज एमक्यूएम के वफद की जो मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से वो कितनी कामयाब रही और किन तहफ़ुज़ात के साथ आप लोग गए थे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो 5 रुकनी वफ्त हमारा इस्लामाबाद में मौजूद है उस वफ्त के अराकीन का सबसे पहले जो गुफ्तगू हुई, मुज़ाकरात हुए, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से हुए। उनसे साथ तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद ये दोनों फरीक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में गए, वहाँ उनके साथ गुफ्तगू चल रही है और उम्मीद है कि इसके मस्बत नतायज सामने आएंगे। हमारे जो ग्रीवांसेस हैं, हमारे जो खदशात रहे हैं या कंप्लेंट्स कह लें, वो 19 नुकात वो थे जिसका मेमोरेंडम बनाकर हमने अपने रेजिग्नेशंस के साथ नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली सिंध और सेनेट के अराकीन ने अपने अपने इस्तीफों के साथ बतौर प्रोटेस्ट वो तमाम नुकात हमने जमा कराए थे। और उन नुकात में 19 जो नुकात थे उनमें जो सरफहरिस्त थे उसमें नंबर एक कादी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के जो खिताबात हैं, इंटरव्यूज़ हैं, उनके ऊपर जो गैर एलानिया पाबंदी लगाई गई, गैर कानूनी पाबंदी लगाई गई, वो नुकात ये अहम नुकता भी उसमें शामिल है। फिर हमारे जो दर्जनों कारकुनान, 40 से ज़ायद कारकुनान हैं जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मावरा अदालत कत्ल कर दिया गया, उनकी डेड बॉडियां कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सिंध के दीगर इलाकों से मिली। उसके साथ साथ तकरीबन 160 के करीब हमारे कारकुनान हैं जो घरों से, दफातरों से या कहीं रस्ते से, उनकी दुकानों से जहाँ वो अपने रोज़गार के लिए काम करते हैं वहाँ से उन्हें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बाकायदा गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद कई कई महीने हो गए वो बाकायदा उन्हें लापता कर दिया गया। और उसके साथ साथ फिर वो कारकुनान, जिम्मेदारान और आम हमारे हमदर्द सपोर्टर हैं जिन्हें घरों से गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद इल्लीगल डिटेंशन में उन्हें रखा हुआ है। तो ये 4-5 नुकात तो मेन हैं, उनके साथ फिर दीगर नुकात भी हैं जो मिलकर तकरीबन 19 के करीब हमारे नुकात हैं जो हमने जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जब गुफ्तगू हुई थी 18 तारीख को, जिस दिन रशीद गोडिल भाई पर कातिलाना हमला हुआ
जी,
उस दिन जी। के मुज़ाकरात में ये तमाम नुकात मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने हमने रखे थे और वो उन नुकात को लेकर गए। उसके बाद उन्होंने हुकूमती जो लोग हैं उनके वफूद से, प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने बात यकीनन की होगी, जब ही ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने का और उनसे मुलाकात करके अपने ग्रीवांसेस उनके सामने रखने का आज हमें मौका मिला है।
तो आप कितने मुतमईन हैं इस मीटिंग से और आपको वज़ीर आज़म साहब की जानिब से क्या यकीन दहानियाँ जो हैं वो कराई गई हैं?
देखें, अभी तक मुज़ाकरात जारी हैं और इसके दौरान अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है कि मुज़ाकरात किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं या किस रुख पे जा रहे हैं। लेकिन चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह उन्होंने कोशिशें काविशें की और हमें भी यकीन दिलाया, आपको याद होगा कि कल और परसों हमने बाकायदा सारी चीज़ों से लातालुकी का इज़हार कर दिया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी माजरत कर ली थी कि हम इस्तीफे वापस लेना नहीं चाहते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब परसों यानी 22 तारीख को जब कराची आए थे तो कराची में आने के बाद जो उनका मीडिया से गुफ्तगू दौरान रवैया रहा और एक तकरीब के अंदर जो तकारीर उन्होंने की, उनमें जिस जज्बात का ख्यालात का उन्होंने इजहार किया, हम उसको समझते थे कि क्योंकि जब मुज़ाकरात का मरहला आने वाला था तो उन्हें वज़ीर आज़म साहब को कम अज़ कम उन यानी जो हमारे ख़दशात तहफ़ुज़ात जो हमारे नुकात थे जिनके बुनियाद पर हमने एज ए प्रोटेस्ट इस्तीफ़े दिए थे, उन्हें उसके ऊपर गुफ्तगू लाजमी करना चाहिए थी ताकि एज ए गुड जेस्चर के तौर पर एक अच्छा माहौल को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं की तो हमने भी इसको महसूस किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे इस्तीफ़ों को और जो हमने 19 नुकात अपने जो मुतालबात हैं मौलाना फजलुर रहमान के मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले किए थे, उनके ज़रिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब तक हमने भेजे, तो हम ये समझ रहे थे कि उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया है। जब ही उन्होंने कराची में आने के बाद इस किस्म का उन्होंने अंदाज इख्तियार किया और उनके अपने जो पार्लियामेंट है नेशनल असम्बली, उसी नेशनल असम्बली के एक रुकन जिन पर कातिलाना हमला हुआ, वो शदीद यानी ज़ख्मी हालत में ज़िंदगी मौत की कशमकश में मुब्तला थे, उनकी आयादत के लिए नहीं गए। तो ये कुछ मिली जुली चीज़ें थीं जिसकी बुनियाद पर फिर हमने ये फैसला किया कि जी मज़ीद मुज़ाकरात आगे करने का कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा।
ओके, ठीक, आप हमारे साथ रहिए। शम्स मीर साहब, तीन जो आज पॉइंट्स जो हैं वज़ीर आज़म के सामने, तीन चीज़ों पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया है जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, उनमें एक ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीरें नशर होने की इजाज़त जो है वो दी जाए। दूसरा उनका ये है कि मिसिंग पर्सन्स जो हैं MQM के और दीगर जमातों के भी, उनको अदालतों में लाया जाए। तीसरा, MQM ने एक ऐसे कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है जो कराची में जारी ऑपरेशन को मॉनिटर कर सकें। तो इसमें पहले पॉइंट को अगर हम देखें तो तमाम सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान की, वो तकरीरें उनकी नशर होती है, तो अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उनकी क्यों ना हो। मिसिंग पर्सन का मामला है, इस पे भी इवन आलमी बरादरी जो है वो भी क्रिटिसिज्म करता रहा है पाकिस्तान पर कि ऐसे मुल्क में जब अदालतें मौजूद हैं, आज़ाद हैं अदलिया, तो लोगों को गायब क्यों किया जा रहा है, उन्हें अदालतों में उनकी ट्रायल क्यों नहीं की जाती। एक दूसरा, तीसरा जो मुतालबा है कमेटी मॉनिटरिंग करने के लिए कमेटी की तश्कील का, उसमें भी कहा जा रहा है कि काफ़ी वज़न है, तो इन मुतालबात को क्यों नहीं माना जा रहा है PMLN की जानिब से? शम्स मीर साहब
जी, जो पहला मुतालबा है अल्ताफ हुसैन साहब की स्पीचेस के हवाले से, वो जो खिताब करते हैं उस हवाले से, इसको आप जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनके साथ इसको इस नैरेटिव को जोड़ा नहीं जा सकता। अल्ताफ हुसैन साहब की जो स्पीचेस हैं वो रियासत के जो बुनियादी फंडामेंटल जो रियासत की एक आइडियालॉजी है आप देखें, उसके खिलाफ कुछ चीजें ऐसी उनकी सामने आई हैं जो
ठीक है, उन्होंने फौज के खिलाफ बातें की हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लीडर्स बैठे हुए हैं उन सियासी जमातों का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि उनके लोग इस वक्त मेरे पास नहीं है, उनके लीडर्स भी फौज के खिलाफ बातें करते रहे हैं, ये सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब नहीं है, तो फिर ये एक्शन जो है उनके खिलाफ क्यों लिया जा रहा है?
जी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक तो अल्ताफ हुसैन साहब की जो इस किस्म की तकरीरें थी जिससे रियासत की बुनियादी रूह मजरूह होती है, एक तो ये सामने रखा गया, दूसरी बात ये रखी गई कि उन्होंने पाक फौज के खिलाफ जिस किस्म का रवैया अपनाया और फिर एक हमारे हमसाया मुल्क को जिस तरीके से वो दावत देते हैं, इस किस्म की चीजें जो हैं आप किस उसमें देखेंगे कि क्या ऐसे लीडर को, इस लेवल के लीडर को जो पाकिस्तान की एक तीसरी बड़ी कुव्वत है वो इस किस्म की बातें करे, एक चौथी बड़ी कुव्वत है ऐसी बातें करे पॉलिटिकल एक पार्टी होने के नाते। अच्छा, इसमें जो अहम बात है कि इसमें अल्ताफ हुसैन साहब को टारगेट नहीं किया गया, ये उस नेशनल एक्शन प्लान का वो जो 20 पॉइंट एंटी टेरर प्लान है ये उसका हिस्सा है, इसमें अल्ताफ हुसैन साहब को टारगेट नहीं किया गया, अल्ताफ हुसैन साहब को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो जो है उनको पाबंदी लगाई गई।
ओके शम्समीर साहब, टाइम बहुत कम है हमारे पास, बहुत शुक्रिया, टाइम काफी कम है, कभी हम तफसील में इस पे हम बात करेंगे। जी शम्समीर साहब,
20 मुकाती एजेंडा है उसके अंदर ये बताई गई है, उसके अंदर ये दिखाया गया है, बताया गया है कि रियासत के खिलाफ या पाकिस्तानी कौम के खिलाफ या पाकिस्तानी नजरिए के रूप के खिलाफ।
शम्समीर साहब, हमें मालूम है नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 नुकात है वो हमें मालूम है अच्छी तरह से, ये भी मालूम है कि किन नुकात पे अमल दरामद हुआ है, किन पे नहीं हो रहा है, क्या नेशनल एक्शन प्लान की जब हम बात करते हैं इस पर सूबा पंजाब में भी अमल दरामद होता है या नहीं, बहुत सारे सवाल हैं, आइंदा डिटेल में इस पर आपसे बात करेंगे, बहुत शुक्रिया है। और मोहम्मद हुसैन खान साहब, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। खालिद फारूकी साहब, आप एक गैर जानिबदार सियासी दर्जा निगार हैं, आप ये बताइए कि MQM के जो तहफ़ुज़ात हैं वो कहाँ तक जेन्युइन है और हुकूमत का जो रद्दअमल सामने आया है आ रहा है वो कहाँ तक दुरुस्त है?
देखिए ये बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल है उसे समझना, क्योंकि कराची के हालात आप जानते हैं, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ सबसे बड़े स्टेक होल्डर जिसको हम कहेंगे वो MQM ही है। उस शहर में कई साल से MQM जो है उसको हमें अक्सरियत मिलती है, वो हर हुकूमत का एक हिस्सा है, लेकिन अब ये जो ऑपरेशन हो रहा है इस पर MQM की तरफ से जो एक रद्दअमल सामने आया और जिस तरह से ये उस ऑपरेशन को एक तरह से ये MQM ने डिक्लेयर कर दिया कि ये बुनियादी तौर पे उनकी तंजीम के खिलाफ है, ये बात कहीं दुरुस्त भी है और कहीं गलत भी है, इसलिए कि जब कराची में ऑपरेशन होगा और जब कराची में ऐसे लोगों के खिलाफ जो जब नेक लोगों की गिनती होगी तब भी MQM के लोग ज्यादा आएंगे, जब मसाजिद में जाने वालों की गिनती होगी तब भी MQM के लोग ज्यादा आएंगे, जब मुजरिमों की गिनती होगी तो वो भी MQM क्योंकि बड़ी जमात है तो इससे मुतलका ये इससे रिलेटेड लोग जो हैं वही वहां पे ज्यादा उनकी तादाद भी होगी, तो MQM को इस पे जितनी उससे चीखो पुकार की है, जिस तरह एहतजाज किया है इस तरह नहीं करना चाहिए था, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ देना चाहिए था कि हाँ जी आपने ये ऑपरेशन शुरू किया है, यहाँ हमारे तहफात हैं, यहाँ हम कोर्ट्स में जा रहे हैं, यहाँ आपने नाजायज सफा मारा, यहाँ आप हमारे इतने लोग ले गए, और पाकिस्तान का मीडिया इसको बड़ी कवरेज दे रहा था, पाकिस्तान के मीडिया में वो तमाम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनके तमाम इश्यूज जो है उनको हाईलाइट किया गया है, लेकिन जो इल्ताफ हुसैन की तकरीर के हवाले से वो जो मामला उठाते हैं और फिर उसका अपना उनका जो मुकदमा है उसको वो इजहार इस तरह से करते हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं जायज कह रहे हैं, लेकिन किसी भी मुल्क में कुछ लिमिट्स होती हैं, अगर पंजाब में बैठा कोई शख्स जो है फौज के बारे में कोई ऐसी बात करता है जो कि उसको जो नामनासिब नहीं करनी चाहिए तो फिर उसको भी नहीं करनी चाहिए, अगर सिंध में करता है तो तब उसको भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब किसी को मुकद्दस गाय बनाना हरगिज नहीं है, क्या फौज को या अदलिया को या किसी और इदारे के बारे में ये सोचे कि उनपे जो जायज तनकीद है वो नहीं हो सकती, लेकिन जो इल्ताफ हुसैन ने जिस तरह की बातें की शायद उनको कराची में भी ऐसे पसंद ना किया गया हो, लेकिन कराची में क्योंकि इसके बारे में लोगों को रद्द अमल का मौका नहीं मिलता या जरूरत नहीं होती,
इसलिए कराची के लोग ये कहते नहीं है कि आप देखिए हमें, हम ये जानते हैं कि इस रीजन में पाकिस्तान भारत एक दूसरे के मुखालिफ मुल्क है। क्या दिल्ली में बैठा कोई शख्स ये कह सकता है कि पाकिस्तान की फौजें आए और दिल्ली पर हमला कर दें? इसी तरह पाकिस्तान में बैठा कोई शख्स ये नहीं कह सकता। इंताफ हुसैन के बहुत से तहफात जो हैं, एमकेएम के जो बहुत से मुतालबात हैं वो जायज हैं, लेकिन उनको अपनी जुबान पे बहुत ही कंट्रोल करना चाहिए
और बाकी सियासतदानों को
इस्तेमाल में ग्रेज करना चाहिए और उनको उनकी तरबियत करनी चाहिए, ना कि उनको इश्तियाल की तरफ ले जाए। सो कुछ चीजें जायज हैं कुछ, लेकिन जहां तक अगर नवाज शरीफ साहब की हम समझे कैपेसिटी, तो वो जो ऑपरेशन है उसको रोकने की वो कैपेसिटी नहीं रखते। ये ऑपरेशन जिस तरह से शुरू हुआ है, अगर हम ये समझें कि इस वक्त कोई सियासी क्यादत जो है, खा वो सूबाई हो या मरकजी, कि इस ऑपरेशन को दरमियान में रोक लेगी और फौज की मर्जी के बगैर रोक लेगी, तो ये नामुमकिन है।
जी बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब, जी बेहद शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और सामिन, इस वक्त यहाँ वाशिंगटन DC से डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, आवाज़ आ रही है आपको?
जी मुझे आ रही है, फरमाइए।
बिल्कुल डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, एशिया के कई ममालिक की जो स्टॉक मार्केटें हैं उसमें मंदी नज़र आ रही है, गिरावट के वो शिकार हैं, ये बताइए कि इसकी वजूहात क्या हैं और क्या असरात इसके मुरतब हो रहे हैं?
देखिए वजूहात तो कई हैं, लेकिन एक सबसे अहम वजह यह है कि चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है उसके अंदर स्लो डाउन हो गया है। उसके अंदर चूंकि अनसर्टेनिटी पैदा होती चली जा रही है और इकोनॉमिक आउटलुक खराब होती जा रही है, तो उसकी वजह से तमाम दुनिया पे असरात हो रहे हैं। पहला सबसे जो असर होता है वो यकीन स्टॉक मार्केट ही पे होता है, क्योंकि वहां पर एक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है और लोग अपने स्टॉक से निकलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कीमतें गिर जाती हैं। वो जो असर है वो बाकी तमाम दुनिया में भी पाया जा रहा है। इसी वजह से ऑयल की कीमत भी गिर गई है और तमाम दुनिया में स्टॉक मार्केट की प्राइसेस गिर रही हैं, और उसके साथ साथ डॉलर की वैल्यू भी गिरी है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर चीन के अंदर कोई करेक्टिव किस्म की पॉलिसीज ली जाए, जिसकी वजह से वहां की जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है और जो अनसर्टेनिटी है उसके खिलाफ इकदाम लिए जा सके, तो फिर हो सकता है कि तमाम बाकी दुनिया में भी कंडीशन इंप्रूव हो जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये एक हर्ड अपील होती है कि अगर एक मेजर मुल्क जैसा कि चीन है, अगर उसके अंदर कंडीशन खराब हो जाए तो बाकी तमाम दुनिया में भी अनसर्टेनिटी पैदा होती है और उसके वजह से कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही आते हैं जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं।
ठीक, ओके डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब हमारे साथ रहिए। अमजद मलिक साहब ने भी लंदन से हमें ज्वाइन किया है। अमजद मलिक साहब सलाम अलैकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि इस वक्त हम देख रहे हैं दाइश जो हैं वो जो आसारी कदीमा है उनके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चला रहे हैं, आज भी 2000 पुरानी इबादतगाह को उन्होंने तबाह किया है, ये बताइए कि इस मुहिम के पीछे दाइश की सोच क्या है?
मेरे ख्याल में ये अगर आप इसको पुराना थोड़ा सा पीछे लेके जाके देखें तो इसी तरह का एक वाक्या अफगानिस्तान में भी हुआ था तालिबान के हाथों,
बामियान।
तो ये बामियान वाला, ये बिल्कुल, ये जब भी आपको एक्सट्रीमिस्ट या ऐसे लोग जो मॉडरेट या मॉडरेट सोसाइटी को बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते उनकी फिलोसफी को, तो वे इस तरह के इकदाम करते हैं कि उनको लगता है कि कोई ऐसा इकदाम किया जाए कि उनकी फिलॉसफी को एडवर्टाइज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनको पजीराई मिले। सो ऐसे वाकयात फिर दोहराए जाते हैं ताकि वेस्टर्न मीडिया उसको पिक करे। उनको जब आप उस वाक्य को पिक करेंगे तो ला महाला उनको उनके जो फिलॉसफी या ऑब्जेक्टिव है या उनकी जो तहरीक है उसको कवरेज मिलती है। सो मेरे ख्याल में ये नेगेटिव एक्ट इन ऑर्डर टू प्रोपेगेट देयर ओन फिलॉसफी है और कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल इसकी अटेंशन मिले, क्योंकि जाहिर है पूरी दुनिया आईएसआईएस के खिलाफ है और उसके ऊपर।
ओके अमजद मलिक साहब, बिल्कुल एक 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। एक और जो इतला है उस पर भी मैं आपकी आपके कमेंट्स लेना चाहूँगी, वो ये कि एक मुसल्ला शख्स को काबू करने पर फ्रांस ने 3 अमरीकी शहरियों को एजाज से नवाजा है, ये बताइए कि दहशतगर्दी में आम लोगों का किरदार कितना अहम है और अब ये एजाज से जिस तरह नवाजा किया है फ्रांस की जानिब से, इससे कितने लोगों की हौसला अफजाई हो सकती है?
میرے خیال میں آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت ہی جو ہے پارٹنرشپ میں سکتے ہیں. اگر عوام اس کو اونرشپ قبول نہیں کرے گی, عوام ویجیلنٹ نہیں رہے گی, اگر عوام مل کے لا انفورسمنٹ کے ساتھ اپنا کردار نہیں ادا کرے گی تو ہم جیت نہیں سکتے. کیونکہ عام لوگ جو ہیں جلدی پک کرتے ہیں آنے ارد گرد ہونے والی حرکات و سکنات, ایوز ڈراپنگ, دیکھنا لوگ کس طرح بہیو کر رہے ہیں, ٹیررسٹ آپ کی سوسائٹی میں جب انفلٹریٹ کرتے ہیں تو وہیں سے بات آگے بڑھتی ہے. تو میرے خیال میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم عوام کو ان کو اپریشیٹ کریں, وہ لوگ جو لا انفورسمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں.
اوکے, بے حد شکریہ امجد ملک صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. سامعین, اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میزبان شہناز نفیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.